ओम शांति। प्राचीन यूनान में एक बार शत्रु राज्य ने आक्रमण किया और यूनान को हरा दिया। वहां के सभी प्रतिष्ठित लोगों को बंदी बना दिया गया। सभी के हाथों में और पैरों में हथकड़ियां डाल दी गई और सबको जंगल में छोड़ देने का हुक्म हुआ, ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाए। ऐसा कठोर दंड दिया गया। ऐसे 100 प्रतिष्ठित लोग थे, उन सबको पकड़ लिया गया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, और सभी बहुत दुखी होने लगे और बहुत रोने लगे और चिल्लाने लगे। पर उसमें से एक जो व्यक्ति था वो वहां का लोहार था और वो खुश हो रहा था। लोगों ने पूछा, तुम क्यों खुश होते हो? उसने कहा, चाहे कैसी भी हथकड़ियां हो, मेरे पास ऐसी कला है कि मैं अपनी भी हथकड़ियां खोल दूंगा और तुम सबको भी मुक्त कर दूंगा। बस इन सैनिकों को यहां से जाने दो और मैं अपना काम कर दूंगा। सभी लोगों को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है और वो सैनिक इन 100 लोगों को हथकड़ियां बांधे जंगल में छोड़कर वापस लौट जाते हैं। सब लोग इंतजार करते हैं कब ये लोहार अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, क्योंकि यही तो समय है जब वो लोहार सबकी हथकड़ियां खोलेगा, खुद की भी खोलेगा और सब मुक्त हो जाएंगे। परंतु ये क्या, जैसे ही वो लोग उस जंगल में फेंके जाते हैं, पाते हैं लोहार जो है वो रो रहा है। सब लोग पूछते, तुम रो क्यों रहे हो? तुम ही थे तो आशा बंधी हुई थी कि तुम हमें मुक्त करोगे, क्योंकि तुम्हारा ही ये काम है, हथकड़ियां बनाना, चेन बनाना, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। परंतु वो लोहार कहता है, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जो हथकड़ियां हमारे हाथों में है, ये मेरी ही बनाई हुई है, और जब भी मैं कोई हथकड़ी बनाता हूं उस पर अपना नाम जरूर लिखता हूं, हर हथकड़ी पर मेरा नाम लिखा हुआ है। और मैं जब कोई हथकड़ी बनाता हूं, ऐसी बनाता हूं कि उसे मैं खुद भी निकाल नहीं सकता। और वो रोता है। जो बेड़ियों में हम जकड़े हैं, वस्तुतः हमने ही बनाई है। जिन बंधनों में हम फंसे हैं वह स्वनिर्मित है। जिन्हें हम बंधन कहते हैं वो किसी और के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ना किसी पति ने, ना किसी पत्नी ने, ना किसी बेटे ने, ना किसी बेटी ने। सारे बंधनों का निर्माता मैं स्वयं हूं। और वह ऐसी बेड़ियां हैं कि निकलती नहीं, छूटती नहीं, समाप्त नहीं होती। क्या कोई मार्ग है जो संसार के भवपाश से मुक्त हो जाए चेतना? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है कि बंधनों में फंसा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त हो जाए? जब भगवान धरती पर आते हैं, सभी आत्माओं को मुक्त करते हैं, सभी सीताओं को रावण के कारागार से मुक्त करते हैं, और इस मुक्ति के लिए वो एक चीज सबको देता है और जिसका नाम है श्रीमत, और जिसका नाम है मर्यादाएं, और जिसका नाम है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय आज्ञाएं। और उसका यह कहना है कि अगर तुम इसको मानो तो तुम्हारे सारे बंधन, तुम्हारी सारी हथकड़ियां, तुम्हारी सारी सलाखें, तुम्हारे सारे पिंजड़े, तुम्हारी वो सारी चेन्स खत्म हो जाएगी। तो हमको एक कंगन पहनना है, और वो कंगन है मर्यादाओं का कंगन, नियमों का कंगन। ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये चार बातें हैं। सबसे पहला ये संस्था है, और हर संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी एक यज्ञ है, और यज्ञ बहुत विधिवत किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। तीसरा, ब्रह्मा कुमारी एक परिवार है, ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार, गॉडली फैमिली, द डिवाइन फैमिली। और यह लौकिक परिवार नहीं है, यह याद रखना। इस परिवार में नो पर्सनल रिलेशनशिप्स, नहीं तो संसार में जो बंधन है और संसार के जो परिवार के संबंध है, अगर कोई सोचे मैं यहां पर भी वो सारे संबंध निर्माण करूं, तो इस संसार में और उस संसार में कोई अंतर नहीं होगा और उसका पतन होगा। ये ईश्वरीय परिवार है, यहां सभी भाई भाई है, यहां और कोई दूसरा संबंध नहीं है। अगर दूसरा संबंध जोड़ने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं से माया आएगी। विशेष बहन और विशेष भाई, ये मेरी माँ जैसी है और ये मेरे पिता जैसे है, ये बेटी बेटी जैसी है, ये कन्या और ये कुमार मेरे लिए बेटे जैसा है। एक ही संबंध, सब भाई भाई। लौकिकता के संबंध यहां जोड़े तो यहां पर भी पतन शुरू हो जाएगा, वही लौकिकता यहां भी आ जाएगी। कुछ दिन पहले मुरली में था, अगर बच्चे शरारत करे तो उसे क्या समझो, क्या समझो, छोटा भाई, ओखली से बांध दो उसे, मारो नहीं। कुछ दिन पहले मुरली में था, तो चाहे कोई कुछ भी हो, सब आत्माएं हैं। तो ये तीसरा है ब्रह्मा कुमारीज अर्थात परिवार, और चौथा ब्रह्मा कुमारीज अर्थात पाठशाला, स्कूल, यूनिवर्सिटी। और हम सब गॉडली स्टूडेंट है, स्वयं भगवान हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और स्कूल के बहुत सारे नियम हैं, और उन्हीं नियमों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास केवल आधा घंटा है, वैसे तो ये क्लास बहुत लंबी है, क्योंकि हम आपको ऐसे 26 नियम, 26 मर्यादाएं ब्राह्मण परिवार की, ब्राह्मण जीवन की, वो बताने वाले हैं। एक एक मर्यादा पर दो दो घंटे का क्लास हो सकता है, इतनी सूक्ष्म बातें हैं उसमें। परंतु आज समय का अभाव और बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए संक्षेप में आपको बता रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्माओं को इन सभी मर्यादाओं का पालन करना है। यदि एक भी मर्यादा कम हुई तो कहीं ना कहीं से माया आएगी। और उससे पहले एक दूसरी बात, एक सन्यासी किसी गांव में आता है, थका है, बहुत थक चुका है, एक कुआ है पनघट, वहां सो जाता है, एक पत्थर लेता है उसको सिरहाने लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद गांव की स्त्रियां आती है पानी भरने के लिए, और जैसी स्त्रियां वहां आती है, एक स्त्री कहती है, सन्यास ले लिया परंतु तकिए का मोह अब तक गया नहीं। तो वो सन्यासी सुन लेता है और उस पत्थर को फेंक देता है। दूसरी स्त्री कहती है, सन्यास ले लिया पर अकड़ अब तक नहीं गई। वो खड़ा हो जाता है। तीसरी पनिहारिन, तीसरी स्त्री जो पानी भरने आती है, वो कहती है, हम तो आएंगे और जाएंगे, तुम हमसे क्यों प्रभावित होते हो। चौथी पनिहारिन आती है, चौथी स्त्री, वो कहती है, चाहे हम तुमको कुछ कहे कुछ न कहे, तुम अपने राम का भजन गाते रहो, तुम क्यों प्रभावित होते हो, क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें संसार कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। आंखें नीचे देखकर चलो तो लोग कहेंगे इनका तो संसार में ध्यान ही नहीं है, आंखें ऊपर देखकर चलो तो लोग कहेंगे कम से कम जमीन की तरफ तो देखा करो, इधर और उधर देखो तो लोग कहेंगे इनकी आंखों का कोई ठिकाना नहीं है, आंखें फोड़ दो तो लोग कहते थे कर्मों का हिसाब है। कुछ भी कहो, ज्ञान में चलो तो लोग कुछ कहेंगे, ज्ञान को छोड़ दो फिर भी कहेंगे, देखा हमने तो पहले ही बोला था छोड़ दिया ना। कुछ भी करो संसार कुछ ना कुछ कहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और हमारी ईश्वरीय मत मर्यादाएं ऐसी है कि भगवान के द्वारा दी हुई है, इसलिए चाहे संसार को जो कहना है कहने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम अपनी धारणाओं में चलते रहेंगे। जिसको आना है आ जाए, जिसको नहीं आना है मत आए। हम ज्ञान में हैं, बच्चे ज्ञान में नहीं है, क्या कर सकते हैं, उनका भाग्य ही नहीं है। हम ज्ञान में हैं, वो चाहते हैं कि शादी करे, करा दो उनकी शादी और जाने दो संसार में, हम कुछ नहीं कर सकते। शायद उनके बच्चे कभी होंगे और उनके बच्चों के द्वारा वो ज्ञान में आएंगे, उसको 20 साल बाकी है अभी, छोड़ दो उनको। किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बच्चे ज्ञान में है, माँ बाप ज्ञान में नहीं है, क्या कर सकते हैं। कितनी सारी दादियां थी या वरिष्ठ भाई थे, उनके माँ बाप कभी भी ज्ञान में नहीं आए तो क्या दुखी हो जाए। ये मार्ग अकेले का मार्ग है, एकांगी पगदंडी है, द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले को अकेले की ओर जाना है, एकला चालो रे, यहां कोई भी साथी नहीं है। जो हम समझते हैं हमारे साथ ये सब भी चले, इच्छा बहुत अच्छी है परंतु दुखदायी है, क्योंकि वो अगर नहीं चलेंगे तो दुख होगा। और सब इस मार्ग पर चल भी नहीं सकते, इस मार्ग पर तो वही चलते जिन्होंने स्वयं भगवान ने जिनको चुना है, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन। इसलिए अपने मित्र संबंधियों से और अपने परिवार वालों से और अपने समाज वालों से ये अपेक्षा नहीं रखना कि ये हमारी बातों को समझ लेंगे, हमें मान लेंगे और कहेंगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और हम भी आना चाहते, ऐसा शायद कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे 26 मर्यादा हम देखेंगे। सबसे पहली मर्यादा अमृत वेला। जो अब तक भी अमृत वेला रेगुलर नहीं हो पाए हैं, आज से इस भट्टी से ये संकल्प करना है, अमृत वेला ठीक करना है, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है। जैसा आदि होगा उसी का प्रभाव दिनचर्या में होगा। परमात्मा महावाक्य है, अमृत वेला स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी देहधारी का प्रेम तुमको न खींचे। कोई भी देहधारी आकर्षित ना करे। क्यों ऐसा हो रहा है कि आज अमृत वेला 3 बजे, कल 3:30 बजे, कल 4:45 बजे और कभी 4 बजे और कभी 4:30 तो कभी 5? क्यों मिस हो रहा है? क्यों इतने सालों के बाद भी रेगुलर नहीं हो पाया, कंसिस्टेंसी नहीं है? क्यों अब भी नींद आती है और कब, क्यों अब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं और क्यों अशरीरी नहीं हो पाते, क्यों अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है? अगर यह पहला ही नियम ठीक नहीं किया है तो कितनी भी भट्टियां कर लो और कितना भी ज्ञान सुन लो, सब व्यर्थ। भगवान कह रहा है केवल मेरा बाबा नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, वो जो कहता है वो करना है, तो ही कहा जाएगा कि भगवान के लिए प्यार है। झूठा प्यार नहीं चाहिए, आडंबर नहीं चाहिए, ढोंग नहीं चाहिए। यहां ऐसा प्रेम भगवान को पसंद नहीं, उसे निर्मल हृदय का प्रेम चाहिए। और जहां ऐसे प्रभु प्रेमी है वहां वो स्वयं विराजमान है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना वैकुंठ में हूं ना ही योगी के पास हूं, परंतु मेरा भक्त मेरा प्रेमी जहां अनन्य भाव से मुझे पुकारता है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां स्वयं उपस्थित हूं जहां मुझे प्रेम करने वाले हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। ऐसे जो शुद्ध चरित्र है, प्योर आत्माएं हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय है वो मुझे प्रिय है, छल कपट करने वाले, छिद्र विशान करने वाले, दूसरों के दोष देखने वाले मुझे पसंद नहीं। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शल सी द किंगडम ऑफ गॉड। जीजस अपने शिष्यों से कहता है वो धन्य भागी है जिनका हृदय शुद्ध है, केवल वही भगवान का दर्शन कर सकेंगे और नहीं। तो सबसे पहली मर्यादा, अगर ठीक नहीं हो रहा है, अगर मिस हो रहा है, अगर अप एंड डाउन चल रहा है, अगर सब कुछ करने के बाद भी रोज मिस हो रहा है, किसी की मदद लो, किसी को कहो हमको कॉल करे सुबह, कोई मित्र ढूंढो, कोई साथी ढूंढो, अमृत वेले का साथी जो हमको उठाए जगाए, हमारी मदद करे। कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, परंतु ये पहली मर्यादा है, ये पहली श्रीमत है। ए फॉर अमृत वेला, बी दूसरी मर्यादा ब्रह्मचर्य। दादी प्रकाशमणि ने कभी पांडव भवन की सभा में सभी मधुबन निवासियों से कहा था, अपनी पवित्रता की परसेंटेज लिखो। क्या करो? अपनी प्यूरिटी की परसेंटेज लिखो। और दूसरे दिन जब सब ने लिखा, दादी ने कहा था यह किसी को बताया नहीं जाएगा, जला दिया जाएगा, नाम सहित लिखो। और दूसरे दिन दादी ने कहा जिन्होंने 50% से कम लिखा है कृपया यहां से चले जाए, प्लीज गेट आउट। जिनकी सारी धारणाएं परंतु पवित्रता और ब्रह्मचर्य में ही खंडन हो रहा है और बार बार खंडन हो रहा है, आउट। इस यज्ञ का फाउंडेशन प्यूरिटी है। दादियों ने जो सहन किया, माताओं ने जो सहन किया, किस लिए किया? पवित्रता के लिए किया। इतनी मार खाई क्यों खाई? पवित्रता के लिए की। यदि हमारी पवित्रता संसार के तुच्छ सुखों से खंडित हो रही है तो शायद हम ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं। तो सभी आज से, अभी से, इसी भट्टी से फिर से अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को दृढ़ करना है। ये देखा जाए तो इस यज्ञ का ये सबसे पहला आदेश है। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, एक जन्म के लिए पवित्र रहो। काम विकार में बहुत गोते खा लिए, वो क्षण भंगुर और अल्पकालीन सुख बहुत भोग लिया, जिसने दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया, क्या अब भी मेरी नहीं मानोगे? मैं तुम्हें बस एक ही वस्तु मांगता हूं, काम। दूसरी मर्यादा ब्रह्मचर्य, तीसरी मर्यादा सी, सेंटर का वायुमंडल। हर ब्राह्मण आत्मा की यह जिम्मेवारी है, चाहे वो वहां रहने वाले हैं या आने वाले हैं, सभी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेवा केंद्र का वायुमंडल शक्तिशाली बनाए। यदि कोई भाई, यदि कोई बहन, कोई माता, कोई कन्या, कोई कुमार सेवा केंद्र पर आ रहा है और वहां पर उसके मन में कुविचार चल रहे हैं, तो वो उस सेवा केंद्र का वायुमंडल दूषित कर रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी वजह से सेवा केंद्र का वायुमंडल दूषित ना हो, इसलिए वहां पर ऐसी कोई चर्चा नहीं करनी है जो संसारिक है। एक भाई बता रहा था, हम क्या करें, हमारी क्लास में लोग मुरली सुनने आते हैं, मुरली जैसे ही पूरी होती है तीन चार भाई लोग चेयर लेकर बैठते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते हैं, क्या करें? सेंटर पॉलिटिक्स की चर्चा करने के लिए नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए। मिनी मधुवन है, वो तीर्थ स्थान है, वहां पर ज्ञान गंगाएं बह रही है। और कुमार और भाइयों के लिए, यदि किसी मंदिर में कोई कुमार, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष जाता है और देवी का मंदिर है और उस देवी के प्रति उसके मन में कुविचार चलते हैं और वहां के लोगों को वो पता चल जाए तो क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे? निकाल देंगे वहां से। कल भी यहां सारी जो बैठी थी बहने, वो कौन थी? मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है, शिव शक्तियां आ गई। वायुमंडल को दूषित नहीं करना है, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, ये मर्यादा है सी। उसके बाद में डी, ड्रेस। ऐसे कपड़े पहनना कि जिससे हमारी तरफ कोई आकर्षित हो जाए, ऐसे वस्त्र पहनना कि दूसरों का ध्यान हमारी देह की तरफ चला जाए, ऐसे वस्त्र पहनना, क्रीम, पाउडर, फैशन, सेंट, परफ्यूम, टैटू, हेयर डाई। हमारा श्रृंगार शारीरिक नहीं है, आत्मा का श्रृंगार पवित्रता है। हमारा ड्रेस सादगी वाला हो, सिंपल हो, स्वच्छ हो। ऐसा ना हो कि जिससे किसी के मन में विकार की भावना उत्पन्न हो। इस्लाम धर्म में पांच बातें लिखी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, परंतु बहनों के लिए लिखी है, पर भाइयों के लिए भी हो सकती है। इस्लाम धर्म में लिखा है स्त्रियों के कपड़ों के विषय में पांच धारणाएं होनी चाहिए। सबसे पहला चेहरा और हाथ और पैर, पैर भी नहीं, चेहरा और हाथ, बस इतना ही खुला हो, फर्स्ट। दूसरी धारणा, वस्त्र ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ना हो। तीसरा, पुरुषों के जैसे ना हो, स्त्रियों के वस्त्र पुरुषों के जैसे ना हो। चौथा, भड़काऊ ना हो। और पांचवा जो नास्तिक है, जो कुफ्र करते हैं, ये इस्लाम धर्म में लिखा है, इसलिए उन्होंने उधर का शब्द प्रयोग किया है, जो काफिर है, काफिरों के जैसे ना हो, अर्थात नास्तिकों के जैसे ना हो। चाहे ये स्त्री के लिए लिखा है, परंतु ऊंची बातें लिखी है, क्योंकि हम आज वर्तमान में इन सभी बातों का पतन संसार में देख रहे हैं। तो हमारे वस्त्र स्वच्छ हो, ढीले हो, ये भी एक लिखा है एक जगह। और वाइट अगर हो तो बहुत अच्छा, अगर वाइट ना भी हो तो हल्का कलर हो, बहुत ज्यादा डार्क तमोप्रधानता की निशानी है, हल्के हो, कोई देखे तो उसे लगे कि कोई देवी है, कोई देखे तो उसे लगे साक्षात माँ है, साक्षात्कार हो जाए। ऐसे वस्त्र साकार मुरलियों में आया है, सफेद साड़ी पहनी हो, हाथों में मुरली हो, जटाएं खुली हो, तुम हो राज ऋषि, कभी साकार मुरली में शब्द आए हैं। तो डी अर्थात ड्रेस, और जितना हो सके जो एक्स्ट्रा ड्रेसेस हमारे पास है उनका दान करते जाओ, क्योंकि बहुत सारे कुमार हैं उनको आवश्यकता है, बहुत सारी कुमारियां हैं उनको आवश्यकता है, और हमने अपने कबर्ड में हजारों साड़ियां और हजारों चीजें भर भर के रखी है, वो दे दो, कईयों को काम आएगी। उसके बाद में ई, ई अर्थात इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थात काट कसर, इकोनॉमी अर्थात फिजूल खर्ची बंद, इकोनॉमी अर्थात मार्केट में गए मन में कुछ नहीं है पर आते समय ढेर सारी वस्तुएं लेकर आए। मधुबन एक बैग लेकर जाते हैं, आते समय तीन बैग कैसे होती है समझ में नहीं आता है, सेवा के साधन लेके आए दूसरी बात है, परंतु वहां माया भी बहुत है, पूरा मार्केट लगा हुआ है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके लिए उसके लिए, ये लू वो लू। दादी प्रकाशमणि ने कभी माताओं से कहा था जितना हो सके यज्ञ में दे दो, माताओं ने कहा नहीं नहीं दादी हम बहुत गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। और वही सारी माताएं शाम को नकी मार्केट बैग भर भर के लेके आ रही है अपनी बहू ननद बेटी और सबके लिए सामान, साड़ियां, कंगन, चप्पल, राजस्थानी चप्पल, तब पैसे आ गए। और दादी ने जब कहा नहीं नहीं हम तो बहुत गरीब है दादी, हमारे पास तो बस टिकट के लिए जाने के लिए पैसे रखे हुए हैं। इकोनॉमी अर्थात यज्ञ की कोई भी वस्तु को वेस्ट नहीं करना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, भोजन, ढेर सारा थाली भर कर ले लिया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खा लिया, सब डालो डालो डालो, और बाद में पता चला हम खा नहीं सकते और फेंक दिया। मधुबन में हम देखते एक एक ग्लास भर भर के चाय लेते, आधा पीते और रख देते, कितना वेस्ट करते हैं अन्न, कितना बोझ है ये। अगर खाना ही नहीं है, अगर पता है ये नई वस्तु बनी हुई है, थोड़ा सा लो, बहुत सारा ले लो, पूरा थाली भर लो, एडजस्ट करते हैं उसमें, इतना भर देते हैं और फिर वेस्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, धन, पैसा, चाहे लौकिक में रहते हैं परंतु यही समझना हमारी पालना यज्ञ से हो रही है। हमने एक माता देखा था गृहस्थी, जो भी सामान लाती थी, सब्जी लाती थी, सबसे पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने, ये बाबा आपका, फिर लेती थी। जो सैलरी आती थी युगल लेके, सबसे पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने, अब बाबा से लेंगे। हर चीज जो ला रहे हैं पहले बाबा को अर्पण, फिर हम लेंगे। हमारा कुछ भी नहीं है, सब उसका है। विदेश में कैसे बात करते हैं लोग, ये बाबा की कार है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का बगीचा है, ये नहीं ये हमारा घर है, बाबा का घर है। बहुत ज्यादा आदत है उनको इस तरह की बात करने की। ये भी समर्पण भाव है। तो ई अर्थात इकोनॉमी, कुछ भी वेस्ट ना करना। और सबसे बड़ा वेस्टेज है ऊर्जा, एनर्जी, शब्दों का वेस्टेज, संकल्पों का वेस्टेज, कर्म का वेस्टेज। ऐसे संबंध बना रखे हैं, संबंध संपर्क, उसमें वेस्टेज। फोन पे बातें चालू है आधा आधा घंटा तक, क्यों बात कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है। इंटरनेट वेस्टेज, एफ अर्थात फूड, अगली मर्यादा है भोजन की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प और फल, इतना भी अगर तू खाए तो मुझे अर्पण कर और फिर खा। इस सभा में ऐसी कितनी माता है जो रोज भोग लगाती है, बस जो जो घर में भोजन बनाते हैं 24 घंटे में एक बार भगवान को भोग जरूर लगाना है। नहीं लगाते तो कल से या आज से चालू करना है, कल से। अर्पण किया जाए भोजन और फिर स्वीकार किया जाए तो उसमें शक्ति भर जाएगी। और जो कुमार और भाई भोजन नहीं बनाते वो भी उसे अर्पण करके फिर स्वीकार करे। उसके बाद है जी, जी अर्थात गिविंग, दुआएं देना, सुख देना, खुशियां देना, शुभ भावना, शुभकामनाएं देना सबके प्रति। गिविंग हैप्पीनेस, गिविंग ब्लेसिंग्स, गिविंग गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स, सबको सुख देना। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अनेकों के हित के लिए, सबके कल्याण के लिए। उसके बाद में एच, होली कंपनी अर्थात सत्संग। कल हमने सत्संग की 7 बातें देखी थी, वो सभी बातों को अमल में लाना। परमात्मा का संग, दूसरा उसके ज्ञान का संग, तीसरा आत्माओं का संग, चौथा किताबों का संग, पांचवा ऑडियो विजुअल, छठवा स्थान और 7वां सकाश ग्रुप, संगत की रंगत। सत्संग करना, और इसका अर्थ है सेंटर पर मुरली सुनने जाना। ये नहीं हम तो मोबाइल में सुन लेंगे, हम कार में सुन लेंगे, क्योंकि जब सेंटर पर जाते हैं तो वहां के वायुमंडल का प्रभाव, शक्ति आती है। घर पे पढ़ तो सकते हैं परंतु वो शक्ति नहीं आएगी। और आज सुबह की जो मुरली थी अव्यक्तवाणी पार्टी 2, मुरली वो है जो मधुबन से आती है, मुरली वो है जो पढ़ाई वो है जो मधुबन से आती है। इसके अतिरिक्त और कहीं से भी मुरली आ रही है, इसके अतिरिक्त अगर कोई कहे कि हमारे तन में शिव बाबा आता है और हमारे तन में यह आता है वो आता है, सब कुछ माया का खेल है। इसे निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, इसे ज्ञानी तु आत्मा नहीं कहेंगे। और जो व्यक्ति इससे भ्रमित हो जाते हैं और यहां वहां भागते हैं वो अपने जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सीधा सीधा संपूर्ण ज्ञान दे चुके हैं। भगवान का एक ही रथ है बस, ब्रह्मा, उसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई भी रथ नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझ में आ रहा है, हो सकता है कोई दूसरी आत्मा उसमें आ रही है, पर शिव बाबा नहीं। उसका एक ही मुकरर तन है, बस ब्रह्मा। इसके अतिरिक्त संसार में कहीं पर भी कोई भी कुछ भी कहता है, प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि माया महाठगनी हम जानी। वो ऐसा रूप होगा कि बड़े बड़े महारथी भी हिल जाएंगे उसको देखकर। इसके लिए उससे प्रभावित नहीं होना है। इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, इसके तन में, उसके तन में। अगर ऐसा होता तो भगवान स्वयं कहता है कि कहता होता कि मैं आज से अपना पार्ट बदल रहा हूं। और भगवान की कर्म भूमि मधुबन है, यह अनाउंसमेंट मधुबन में होती। अगर कोई जा भी रही है कहीं और वहां से कहते हैं कि आप लोग वेरीफाई करा लो, अगर ये भगवान ही है तो वेरीफाई कराने के लिए क्यों पूछ रहे हो? जब हम ज्ञान में आए तो क्या हम भक्ति मार्ग वालों से वेरीफाई कराने गए थे? क्या हम मस्जिद में गए थे? क्या हम मंदिरों में गए थे और उनसे पूछा था कि हमें भगवान मिला है? इज इट गॉड? ये माया है। सुबह की मुरली फिर से पढ़ लेना, पार्टी नंबर 2। पढ़ाई केवल मधुबन से, श्रीमत केवल मधुबन से, मुरली केवल मधुबन से। केवल जो मुरली ब्रह्मातन द्वारा चली वही मुरली है, बाकी जो संदेशियों द्वारा चली है वो मुरली नहीं है, उसमें जादू नहीं है। जादू केवल बाप की मुरली में है। बस संसार में हिलाने वाली बहुत चीजें आएगी। कुछ दिन पहले अव्यक्त वाणी में आया था एंटी क्राइस्ट। हर धर्म में कहा है कि इस धर्म में कुछ समय के बाद एंटी क्राइस्ट आ जाएंगे, कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे क्राइस्ट जैसे दिखने वाले। भ्रमित नहीं होना है, निश्चय को पक्का रखना है। ये एक ही सत्य ज्ञान है, ये एक ही सत्य मुरली है। इसके अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ धोखा है। उसके बाद में आए, आए अर्थात अंग्रेजी शब्द है इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना, दिव्य गुणों की धारणा। इम्बाइब डिवाइन वर्च्यूज, हर दिन लक्ष्य रखना है कोई ना कोई एक नया गुण धारण करना है। उसके बाद है जे, जे अर्थात जर्नी टू मधुबन। मधुबन में जाने की जो विधि है सेवा केंद्र के द्वारा हो, ऐसा नहीं कि हमारी तो बहुत पहचान है, हम लोग सबको वहां जानते हैं, हमें किसी सेंटर के द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी लेटर की आवश्यकता नहीं है। अगर इतने सस्ते में जा रहे हो तो वहां जाकर अनुभव भी कुछ नहीं होगा। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं, अनुभव क्यों नहीं होता? किस लगन से जा रहे? मधुबन जा रहे और सारा ध्यान शॉपिंग में है, मधुबन जा रहा है सारा ध्यान बातें करने में है, मधुबन जा रहे भगवान से मिलने, ध्यान इधर उधर बुद्धि भटक रही है, कैसे अनुभव होगा? आंख चाहिए, आंख तो अनुभव होगा। वैराग की आग, प्रभु प्रेम की आग, तपस्या की आग, मौन की आग, अंतर्मुक्ता की आग, दृढ़ संकल्प की आग, तब अनुभव होगा। उसके बाद है के अर्थात कीपिंग चार्ट, अपना चार्ट रखना, उन्नति का चार्ट। रात को चार्ट लिखना मुरलियों में आया है कई बार। चार्ट लिखो, नया नया चार्ट बनाओ, मुरली के आधार से चार्ट बनाओ और अपनी चेकिंग करो रात को सोने से पहले। एक मुरली में था थक गए और सीधा लेट गए और सो गए, ये है आलस। बाबा को अपना समाचार दो, उसके बाद में ही सोना। के बाद एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं। सब मरे पड़े हैं, बाबा ने कहा, मुर्दा है, लाशें हैं सभी। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन, देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्ष इच्छामि मा सुच। हे अर्जुन, सर्व धर्मों का त्याग कर देह के और मेरी शरण में आ। एक से प्यार, सारों से प्यार करके देख लिया, क्या मिला? धोखा। दुनिया के लोगों से प्यार करके क्या मिला? धोखा, दुख, आंसू, फिर भी प्यार छूटता नहीं। सभी स्वार्थी है, इसके लिए अपने ही मृत्यु का एक दृश्य रोज देखना कि मैं मर चुका हूं, जलाया जा रहा है और लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, वो बातें सुन रहे हैं। हम सोचते हैं ये मुझे कितना प्यार करते हैं, हम मर चुके हैं, अंदर से उनके मन में चल रहा है अच्छा हुआ गया, अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, किसी को तो कोई लेना ही देना नहीं। जब मधुबन में देखते हैं हलवा बना है, पूछते हैं कौन गया, अच्छा ये गया, तब पता चलता है किसी को कोई लेना देना नहीं, तुम हो तुम नहीं हो। हम सोचते हैं मेरी वजह से ये सेवा हो रही है, मैं अगर चली जाऊंगी चला जाऊंगा तो ये सेवा का क्या होगा, डिपार्टमेंट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, तुम ही बाधा है, हट जाओ वहां से, कोई दूसरा आएगा ज्यादा उन्नति होगी, तुम्हारी वजह से सेवा रुकी हुई है। उसके बाद है एम, मुरली चिंतन, मर्यादा है मुरली मनन, हर दिन जो मुरली चलती है उसका गहराई से चिंतन करना है, गहराई से मनन करना है। उसके बाद में अगली मर्यादा है एन, एन अर्थात नो, इसकी लिस्ट बनानी है, बाबा ने किन किन चीजों के लिए नो कहा है, नो फॉर सिनेमा, नो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी नहीं चाहिए जो मैं कर रहा हूं, एक लिस्ट बनानी है अपनी नो की और ऊपर लिखना है जैसे इच्छा हुई वो करने की बाबा ने मना किया है। पावरफुल संकल्प है, रोने का संस्कार है, नो क्राइंग, बाबा ने मना किया है। उदास होने का संस्कार है, बाबा ने मना किया है। मूड ऑफ, आज सुबह भी था, तुम्हारा मूड कैसा होना था, होली मूड, हैप्पी मूड, लाइट मूड, मूड ऑफ नहीं हो जाए, निश्चिंत मूड, स्वराज्य अधिकारी का मूड। उसके बाद में पी, पी भाइयों के लिए प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, बहन सेंटर की बहन से बिना पूछे लिटरेचर प्रिंट करना, किताबें प्रिंट करना, पॉम्पलेट पुट करना, स्वतः ही डिसीजन ले लेना, प्रोग्राम यहां होना चाहिए, प्रोग्राम वहां नहीं होना चाहिए, ये ना भूलो कि भगवान ने निमित्त बहनों को बनाया है, पुरुषों को नहीं, भाइयों को नहीं। अपने आप लिटरेचर प्रिंट करना ये मर्यादा नहीं है। उसके बाद है क्यू, क्यू अर्थात क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, अर्थात जो भी सेवा करो क्वालिटी वाली हो, ऐसा नहीं काम चलाओ, बहन जी ने कहा है इसलिए फटाफट कर दो और चलो, क्वालिटी हो उसमें, कोई भी सेवा हो मनोयोग से मनोभाव से करना है। उसके बाद है आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, इस ब्राह्मण परिवार में हमारे सारे संबंध मधुर होने चाहिए और डिटैच्ड होने चाहिए, किसी में अधिक लगाव, फोन, बातें, एकांत में मिलना, व्हाट्सएप मैसेजेस, इधर से मैसेज उधर से मैसेज, इधर से नाराज उधर से नाराज, क्यों संबंध क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में एस, एस अर्थात साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत, दिनचर्या में मौन और एकांत का समय निकालना है। उसके बाद में टी, टी अर्थात ट्रस्टीशिप, स्वयं को ट्रस्टी समझना है, ये जो पैसे है, ये जो घर है, ये जो बच्चे हैं, सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। उसके बाद है यू, यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिस, बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल परिस्थितियों में प्रयोग करना बार बार। उसके बाद है वी, वी अर्थात वैराग्य, इस संसार से वैराग हो, इस संसार में रस ना हो, रुचि ना हो, यहाँ के आकर्षणों में, तो ही आत्मा परमात्मा की ओर जा सकती है। यहाँ कुछ भी हमारे लिए पाने जैसा नहीं है, सब व्यर्थ है। अंदर ये भाव रो मिटने वाली दुनिया है। उसके बाद में डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर मोशन, ये तो सभी करते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से भी वो एक नियम या मर्यादा है। एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग। दिन में दो बार सेल्फ चेकिंग होनी चाहिए, सुबह एक बार और रात को एक बार सोने से पहले स्वयं की चेकिंग करना। फिर है वाय, वाय अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, योग दो बार नियम है। नुमा शाम का योग और अमृत वेला, अमृत वेला तो सब करते हैं पर नुमा शाम का कई बार मिस हो जाता है, उसको नियमित कर देना है। और लास्ट है जेड, 26वीं मर्यादा, उमंग उत्साह, झील एंड जेस्ट। झील अर्थात उमंग, जो भी काम करो, जो भी सेवा करो, या जीवन में उमंग उत्साह हो। बाबा कहते हैं बाबा को उदास बच्चे प्रिय नहीं है। तो ऐसी ये टोटल 26 मर्यादा है। समय का अभाव है इसलिए शॉर्ट में पूरा किया, पर इस पर गहराई से मनन करना, चिंतन करना, देखना मेरे जीवन में कौन सी मर्यादा की कमी है और उसको मैं कैसे लाऊं। ओम शांति।